आयताक्ष विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरोदय पुष्पन्दो चित्रोचंदो तमोनदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो भागवतम में भागवतम के दशम स्कंध के 81वें अध्याय में वर्णन आता है जब सुदामा जी मिलने गए थे भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण से मिलने गए थे अपनी पत्नी के कहने पर और काफी दरिद्रता में जीवन बिता रहे थे वो। तो उनकी पत्नी बार बार कह रही थी आप जाते क्यों नहीं, आपके फ्रेंड हैं कृष्ण, आप साथ में पड़े हो, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। सो भगवान कृष्ण के पास गए सुदामा जी और सुदामा जी निष्किंचन जो है भक्त थे, उनको भगवान से कुछ भी आशा नहीं थी, भगवान से कुछ इच्छा नहीं करते थे वो। पत्नी ने बोला तो उसको संतुष्ट करने के लिए गए और आप भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे उन्होंने मांगा भी कुछ नहीं भगवान से, मिले और वापस आ गए। ये क्या आवाज हो रही है? आप सब प्लीज मोबाइल फोन अपना साइलेंट कर दीजिए। जब वो मिलने गए थे तो घर में कुछ था ही नहीं उनके पास, पड़ोस में से थोड़ा चिवड़ा लेके गए मांग कर, सूखा चिवड़ा तो लेकर गए थे भगवान कृष्ण को देने के लिए, लेकिन संकोच हो गया दे नहीं पाए। तो भगवान ने उनसे बोला कि आप कुछ लेके नहीं आए मेरे लिए। तो चुप हो गए वो सुदामा जी। भगवान कृष्ण ने कहा कि आपके पास वो है कुछ खाने के लिए, आप मुझे देते क्यों नहीं। तो जबरदस्ती उनके झोले में से वो सूखे चावल निकाले चिवड़ा और भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए। तो भगवान ने कहा बहुत ही स्वादिष्ट है। तो भगवान दूसरा कौर खाने लगे तो लक्ष्मी जी ने रोक दिया उनको। प्रश्न खड़ा हो गया कि लक्ष्मी जी ने क्यों रोका उनको वो चावल खाने से। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उत्तर देते हैं कि लक्ष्मी जी ने इसलिए रोका कि उन्होंने बोला कि अगर सभी आप ही खा जाओगे सारा तो मैं हूँ, मेरी और जो है आपकी और पत्नियां हैं, उनके हिस्से क्या आएगा, अगर एक एक दाना भी देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो सारा आप मत खाइए। इस भाव से लक्ष्मी जी ने उनको रुक्मिणी देवी ने उनको रोका। और वहां पर जब भगवान उनसे सुदामा जी से मांग रहे थे चावल, यद्यपि सुदामा जी संकोच कर रहे थे तो भगवान ने उनको बोला और भगवत गीता का श्लोक कोट किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आगे क्या है आप लोग श्लोक नहीं याद करते हैं? तद अहम भक्ति उपहृतम अशनामि प्रयत आत्मना। कि कोई भक्ति से अगर बहुत ही श्रद्धा से अगर कोई मुझे पत्र फूल फल पानी मुझे अगर कोई भेंट करता है तो मैं उसको खा लेता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। अशनामी, अशनामी का मतलब है खा लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे आचार्य, वो कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक भगवान को ऑफर करने का मतलब है कि भगवान को ऑफर करें ये सोचकर कि भगवान एंजॉय करेंगे, भगवान को अच्छा लगेगा, ये सोचकर नहीं कि फटाफट खा लो हमारी बारी है उसके बाद, है ना। सो आमतौर पे ऐसा होता है ना, कई बार स्पेशली सुबह के समय जल्दी भी होती है, ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है, फटाफट करो फटाफट करो। क्यों फटाफट करो? कि वो खाएं फिर फटाफट हमारी बारी आएगी। नहीं, भोग लगाने से अच्छा है कि लगाया जाए, तो ऐसा नहीं है कि जल्दी भोग लगाना खराब है, लेकिन और 5 मिनट का समय निकालना चाहिए हमें ताकि आराम से हम कि भगवान एंजॉय करें। कई बार ऐसा भी होता है कि एकदम गरम गरम सब्जी होती है और फटाक से भगवान के सामने जाके रख देते हैं, तो भगवान तो गरम गरम खाएं, हाथ पैर चाहे हाथ जल जाए मुंह जल जाए, तो जब तक भगवान खाएंगे 5 मिनट बीत जाएंगे, हमारे टाइम पे खाने लायक हो जाएगा। ऐसे भगवान को हमें ऑफर करना चाहिए जैसे हम अपने 14-15 साल के बच्चे को खिलाते हैं, है ना। इतना भोजन होना चाहिए प्लेट में कि ऐसे नहीं कि एक एक टुकड़ा रख दिया, एक रोटी रख दी, थोड़ी सी सब्जी रख दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक रोटी से 14-15 साल के बच्चे का पेट थोड़ा भरता है, नहीं तो बराबर से भगवान की जो प्लेट है अच्छे से सजाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भगवान उसको ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है, मतलब एक एक रिचुअल है, एक एक काम है, एक प्रक्रिया है, करना है, मतलब रिवाज है भोग लगाना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। जैसा रघुनंदन दास ठाकुर ने लगाया था भोग, मुकुंदत के बेटे थे, तो एक बार मुकुंदत को बाहर जाना था, तो वो जाते जाते अपने छोटा सा बच्चा था उसको बोला कि भोग लगा देना, तो अच्छा पिताजी भोग लगा दूंगा। सो 12 बजे का समय हुआ तो भोग लेके आए अपनी माता से और भगवान को भोग लगा दिया और बोला खाओ, ठीक है। तो फिर 10 मिनट के बाद आए तो देखा थाली वैसी की वैसी है, नहीं तो बोले खाते क्यों नहीं हो, भगवान को कह रहे हैं कि खाते क्यों नहीं हो। सो भगवान कह रहे हैं, भगवान ने बोला खा तो लिया, दृष्टि से देख लिया, खा लिया मैंने, टेस्ट कर लिया है, नहीं नहीं खत्म होना चाहिए, कुछ घटा ही नहीं, मतलब खत्म होना चाहिए। सो भगवान चुप रहे तो रोना शुरू कर दिया रघुनंदन दास ठाकुर ने, छोटे से बच्चे थे। सो भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने बोला रो मत भैया खा लेता हूं, तो भगवान सारा जो भोग लगाया था सब खा गए। तो रघुनंदन दास ठाकुर ने बोला चलो अब ठीक है। सो पिताजी आए 3-4 बजे, भूख लगी है, फटाफट प्रसाद लेके आओ, तो उनकी पत्नी ने बोला प्रसाद खाए सारा रघुनंदन खा गया, वापस ही नहीं लाया और झूठ बोले जा रहा है कि भगवान खा गए। सो तो फिर चैतन्य चरितमृत में वर्णन है इसका, फिर मुकुंद जो दत्त है उन्होंने उनकी परीक्षा की और छुप के खड़े हो गए, बोला दोबारा से कि दोबारा भोग लगाओ, तो दोबारा भोग लगाया तो भगवान दोबारा आके भगवान ने खाया उसको। सो चैतन्य महाप्रभु मिले पुरी में मुकुंदत को और मुकुंदत से पूछा कि क्या तुम रघुनंदन के पिता हो कि पुत्र हो। तो मुकुंदत ने बोला कि वो मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। जबकि भौतिक दृष्टि से मुकुंदत जो पिता थे और रघुनंदन दास ठाकुर जो है वो पुत्र थे, लेकिन भक्ति में ज्यादा उन्नत जो है वो रघुनंदन दास ठाकुर थे। सो भक्ति उपहृतम, दो बार शब्द आया है कि पत्रम पुष्पम फलम तव्यम, यो में भक्त्या परिचिति, जो भक्ति से देता है। हाँ, और फिर बोल रहे तद हम भक्ति उपहृतम, कि भक्ति से ऑफर करता है, भक्ति से भोग लगाता है। दो बार ही भगवान बोल रहे हैं इस बात को जोर देने के लिए कि भक्ति से ऑफर करना जरूरी है, वो आवश्यक तत्व है ना। जरूरी यह है कि भक्ति से ऑफर किया जाए। इसका मतलब ये भी है कि भक्ति से बनाना चाहिए, भगवान के बारे में सोच के बनाना चाहिए, है ना। भगवान को क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा। जैसे भगवान के चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे राघव, है ना। तो चैतन्य चरितमृत में वर्णन भी आता है राघवेंद्र झाली, तो भगवान को हमेशा अच्छे से अच्छा भोग लगाते थे वो। सो एक बार वो नारियल लेके आए भगवान को ऑफर करने के लिए, तो जो नारियल लेके आ रहे थे तो वो छत से छू गया, तो उन्होंने कहा नहीं दूषित हो गया, उसको फेंक दिया नारियल को। दोबारा जाके नारियल लेके आए और भगवान को भोग लगाया। तो कोई सोच सकता है कि क्या पागल है, मतलब छत से छुआ, क्या इतनी बड़ी बात हो गई। लेकिन जो भक्त है वो ये सोचते हैं कि बिल्कुल भी दूषित नहीं होना चाहिए, बहुत शुद्ध होना चाहिए और बहुत अच्छे से भगवान को ऑफर करना चाहिए, क्योंकि भगवान बेस्ट है, भगवान सर्वोत्तम है, इसलिए भगवान को सर्वोत्तम चीज भगवान को ऑफर करनी चाहिए। लेकिन भगवान जो है वो सर्वोत्तम चीज के पीछे नहीं चलते हैं, भगवान देखते हैं कि आपका भाव कितना अच्छा है ना। अगर आप ये श्लोक तो यम यो में भक्त्या परिचिति पत्रम पुष्पम फलम तो यम, चलो पत्ता तो खा लिया, तुलसी का पत्ता है चलो खा लिया, फल खा लिया, जल ग्रहण कर लिया, लेकिन फूल, फूल कैसे खा गए? नहीं, आपने कभी सोचा? हाँ, कि मतलब भगवान ये नहीं कह रहे रोटी शाही पनीर दाल मखनी, पत्रम के साथ पुष्प भी बोल रहे हैं कि अगर कोई फ्लावर भी फूल भी कोई ऑफर करेगा अशनामी मैं ग्रहण करूंगा, है ना। सो प्रश्न यहाँ पे उठाते हैं कि ऐसा कैसे, मतलब भगवान फूल भी कैसे खा जाएंगे, मतलब फूल थोड़े ना खाया जाता है। लेकिन विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान इतने भाव विभोर हो जाते हैं अपने भक्त के भाव से कि उनको समझ नहीं आती, वो क्या खाना है क्या नहीं खाना है भेद नहीं कर पाते, क्या अच्छा बनाए क्या खराब बनाए। जो भक्त ऑफर करता है उसको भगवान ग्रहण कर लेते हैं। और इसका हमें ये बहुत जगहों पे हमें ऐसे प्रसंग मिलते हैं, महाभारत में वर्णन है कि जब भगवान कृष्ण गए थे शांति दूत बन के, नहीं सो जब शांति दूत बन के गए तो दुर्योधन ने उनका स्वागत किया और हाथ जोड़ के उनको अपने महल में लेके आए, बिठाया और उनका हाल चाल पूछा, है ना। और दुर्योधन ने कहा कि आपके हमने रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था की है, मैंने दुशासन का महल आपके लिए रहने के लिए सारा अरेंज कर दिया है, और आप बोलोगे कि दुशासन का महल क्यों, तुम्हारा महल क्यों नहीं। तो दुशासन का महल इसलिए अरेंज किया क्योंकि उसका महल मेरे महल से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया बना हुआ है, इसलिए दुशासन का महल अरेंज किया है और बहुत अच्छे अच्छे पकवान मैंने बनाए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का मैं आपके यहाँ नहीं खाऊंगा, बिल्कुल साफ मना कर दिया। हाँ, आप क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानोगे। हाँ, क्योंकि आप मेरी बात नहीं मान रहे, मैं आपके यहाँ से क्यों खाऊं? मैं आपके यहाँ से खा सकता हूँ बशर्ते आप मेरी बात मानो, है ना। सो उसी तरह से आप सब लोग, आप भगवान को हो सकता है अपने घर में भोग लगा रहे हो, तो कभी मन में प्रश्न उठ सकता है कि भगवान खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, तो आप सोचो कि आप भगवान की बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, है ना। अगर आप भगवान की बात मान रहे हो तो भगवान अवश्य खाएंगे, अगर आप भगवान की बात नहीं मानोगे तो फिर भगवान क्यों खाएंगे। और भगवान बोल रहे हैं, हाँ, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कारो, है ना, कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, हाँ, और हमेशा मेरा ध्यान करो, है ना। सो अगर हम भगवान की ये बात मानेंगे प्रयतात्मना, अगर हम शुद्ध चित्त वाले बनेंगे अगर, तो भगवान अवश्य, हम कुछ भी बहुत ज्यादा अच्छी वस्तु भी अगर हम भगवान को अगर ऑफर नहीं कर पाए, फिर भी भगवान ग्रहण कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भगवान की बात मानी। सो भगवान कह रहे हैं मनमना मत मत भक्तो, और भक्तिनो ठाकुर जो है और उनसे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं जैसे हरिदास ठाकुर, है ना, वो तो रोज 192 माला करते थे, है ना। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि कम से कम 64 माला करनी चाहिए। हाँ, तो कोई भी उनको अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रित करता था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे कि मैं सिर्फ लखपति के घर जाता हूँ। तो कोई बोलते थे कि लखपति के घर मतलब हमारे पास तो नहीं है पैसा, तो उन्होंने बोला जो रोज भगवान का 1,00,000 नाम लेते हैं मैं सिर्फ उन्हीं के घर जाता हूँ। और अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1,00,000 नाम जो है 64 माला में पूरे होते हैं, है ना। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उन्हीं के घर जाते थे जो रोज 64 माला का जप करते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद, श्रील ऐसी भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद बहुत ही दयालु थे, और उन्होंने देखा कि 20-25-30 साल में बहुत ज्यादा पतन हो गया है लोगों का, लोग हृदय से भी कमजोर हो चुके हैं और कुछ संकल्प शक्ति कम हो गई है, है ना। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है आप 16 माला का जप करो, ठीक है। सो मन बना भव मत भक्तों को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि रोज हमें कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए, तभी ये माना जा सकता है कि हम भगवान का कहना मान रहे हैं। सो भगवान कृष्ण ने मना कर दिया कि मैं आपके यहाँ प्रसाद नहीं पाऊंगा। सो भगवान वहां से उठ के विदुर जी के घर चले गए, और विदुर जी एकदम भाविभोर हो गए उनको देख के, और फटाफट वहां पे केले रखे थे और उनको केले खिलाने लग गए। लेकिन इतने आंखों में अश्रु थे उनके कि दिखाई नहीं दे रहा था कि वो केले का गूदा खिला रहे हैं कि छिलका खिला रहे हैं, तो गूदा फेंके जा रहे थे और छिलका खिलाए जा रहे थे, और भगवान जो है उनके छिलके भी, केले के छिलके भी भगवान ने ग्रहण कर लिए, है ना। तो भगवान दिखा रहे हैं कि किस प्रकार वो भक्तों के भाव को अंगीकार करते हैं, खाद्य पदार्थों से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। हम चैतन्य चरितामृत में भी अनेक जगह ऐसा वृतांत मिलता है हमें, ये चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण अवतरित हुए भक्तों का कल्याण करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि जब भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रजा, सो सारे धर्मों को छोड़कर किस प्रकार भगवान की शरण ले जा सकती है, एक भक्त का आचरण कैसे होना चाहिए, वो दिखाने के लिए स्वयं भगवान जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु के अनेक भक्त थे जो भौतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा संपन्न नहीं थे, या अगर संपन्न थे भी तो उन्होंने गरीबी का प्रण उन्होंने लिया, उन्होंने ये व्रत लिया कि वो अभी बहुत गरीबी में जीवन बिताएंगे, जैसे कि रघुनाथ दास ठाकुर बहुत ही अमीर जमींदार के परिवार में से थे, और आज से 550 साल पहले भी उनकी महीने की जो आमदनी थी 5 लाख रुपए थी। अगर आज भी किसी की आमदनी 5 लाख रुपए महीना हो तो बोलेंगे बहुत बढ़िया सैलरी है भैया इसकी, या बहुत बढ़िया इनकम है। तो आप सोचिए कि 550 साल पहले 5 लाख रुपए महीना कितनी बड़ी रकम होगी, है ना। लेकिन रघुनाथ दास ठाकुर जो है शुरू से ही उनका कुछ भी रुचि नहीं थी भौतिकता में, और वो हमेशा यही प्रयास करते थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की शरण में ले पाऊं। तो जैसे ही उनको मौका मिला वो वहां से भागकर जगन्नाथपुरी चले गए और चैतन्य महाप्रभु की शरण ली, और बहुत ही वैराग्य से रह रहे थे, है ना। सो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब वो पुरी चले गए सो उनके पिता जो है उनको पैसा भेजते थे जगन्नाथपुरी में के ताकि तकलीफ ना हो, आराम से रहते रहे। तो उन्होंने कुछ टाइम तो वो पैसा लिया, लेकिन बाद में वो पैसा लेना बंद कर दिया, और उन्होंने अपना पेट भरने के लिए, शरीर चलाने के लिए वो जगन्नाथ मंदिर के बाहर सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगनी शुरू की। सो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अभी इन्होंने अपने घर से पैसे लेने बंद कर दिए हैं और भिक्षा मांग के गुजारा कर रहे हैं, तो बहुत खुश हो गए चैतन्य महाप्रभु। और कुछ समय के बाद रघुनाथ दास ठाकुर ने वहां पर भिक्षा मांगना भी बंद कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कि आजकल रघुनाथ दिखता नहीं है, कहाँ है, तो वो भिक्षा नहीं मांग रहा आजकल। तो उनको बताया गया कि उन्होंने वहां पर भिक्षा मांगना बंद कर दिया। तो बोला भिक्षा मांगना क्यों बंद कर दिया? उन्होंने बोला भिक्षा मांगना इसलिए बंद कर दिया कि उनको लग रहा था कि मैं वैश्यावृत्ति कर रहा हूँ, कोई भी भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आ रहा है तो जो भिखारी है वो यही सोचता है कि मुझे ये कुछ देके जाएगा, है ना, और अगर नहीं देके जाए तो निराशा का अनुभव होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि ये तो वैश्य का स्वभाव है, हर व्यक्ति को अपने ग्राहक के रूप में देखना। तो फिर अभी जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बताया कि वो जीवन यापन कर रहे हैं, अभी जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, जो भोग लगता है, वो बाजार में बिकने के लिए आ जाता है ना। आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? अच्छा, सो ये क्या हो रहा है? अच्छा, सो आप पावन जनार्दन प्रभु, आप कभी जगन्नाथपुरी का बनाओ, सब लोगों को जगन्नाथपुरी लेके चलो कभी, है ना। सो जगन्नाथपुरी में क्या है कि भगवान को भोग लगाते हैं, फिर भगवान को भोग लगने के बाद सारा जो प्रसाद है वो बाजार में बिकने के लिए आ जाता है, लेकिन कई बार सारा प्रसाद नहीं बिक पाता, तो वो क्या करते हैं, जो बच जाता है, बासी हो जाता है, उसको जो गायों के जो तबेला होता है उसमें फेंक देते हैं, और ताकि गायें उसको खा जाएं। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि वो इतना सड़ जाता है चावल कि गायें भी नहीं खाती उसको, है ना, गायें को भी वो खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे कि जो चावल गायें भी नहीं खाती थी वो चावल, सड़ा हुआ चावल लेके आते थे और उसको धोते थे, और उसके अंदर का जो ऊपर का जो गूदा हटाकर अंदर एक सख्त पदार्थ होता था वो धो के उसको वो खा जाते थे। सुचैतन्य महाप्रभु को जब पता चला तो एक दिन वो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए और वहां से रघुनाथ दास गोस्वामी के कुटिया में चले गए उनसे मिलने के लिए, और रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला कि मैंने सुना है तुम बहुत स्वादिष्ट पदार्थ खा रहे हो आजकल। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला नहीं नहीं महाप्रभु, मैं तो मतलब किसी तरह से जीवन बिता रहा हूँ। तो बोला दिखाओ क्या खा रहे हो तुम। तो उनकी झोली जबरदस्ती छीन ली। अब महाप्रभु से कोई हाथापाई तो कर नहीं सकता। तो महाप्रभु ने उनकी झोली ले ली और जो वो खा रहे थे सड़ा हुआ चावल, और महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने वो खाया और बोला कि मैंने आज तक इससे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रसंग हैं, जैसे कोलावेचा श्रीधर है ना। कोलावेचा श्रीधर का नाम सुना है आप लोगों ने? चैतन्य महाप्रभु के भक्त कोलावेचा, उनका नाम था श्रीधर एक्चुअली में, लेकिन वो कोलावेचा श्रीधर नाम इसलिए बोल दिया क्योंकि कोला जो है वो कलकत्ता में बंगाल में जो है वो केले को कोला बोलते हैं, नहीं कोला। हाँ, सो वो केले के पत्तों जो पत्ते हैं उसके दोने बना के बेचते थे और केले बेच के अपना गुजारा करते थे वो, और बहुत ही गरीबी में जीवन बिताते थे। उनके पास एक ही लोटा था और वो लोटे से ही वो पानी भी पीते थे, शौच भी करते थे, सारे काम उसी लोटे से करते थे। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया कोई हो, बहुत ही टूटा फूटा सा लोटा था उनके पास। सो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने से पहले उनके पास जाते थे कई बारी। गया जाने से पहले जब उन्होंने अपने भक्ति का अभी प्रदर्शन अभी प्रकट नहीं किया था भक्ति को, सो बार बार उनको तंग करते थे और उनका सामान छीन के लेके जाते थे। हाँ, बोलते थे कि तुम बहुत ज्यादा रेट लगा रहे हो सामान के, तो रेट बहुत कम करवाते थे। तो कोलावेचा श्रीधर कहते थे तुम ले जाओ फ्री में, मेरी जान छोड़ो। तो बोले अब ठीक है, अब रेट ठीक लग रहा है। सो उनका सामान ले जाते थे वो। सो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते थे कोलावेचा श्रीधर को कि आप बेटा हिलो नहीं क्योंकि वो कैमरा हिलता फिर है ना दरी हिलने से। सो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते थे कोलावेचा श्रीधर को कि तुम्हारे पास बहुत खजाना है, तुमने छुपा के रखा हुआ। नहीं नहीं कुछ नहीं है, मेरी जो ये झोपड़ी है इसकी छत भी टूटी हुई है। जब पानी बारिश होती है तो छत में से पानी सारा नीचे गिरता है तो प्रॉब्लम होती है। मेरे पास पैसे होते तो मैं छत ठीक नहीं करा लेता अपनी। नहीं तुम छुपा के रखा हुआ है, कभी मैं तुम्हारा जो खजाना है इसको उजागर कर लूंगा। सो जब चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति प्रकट की और लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगाया, तो एक बार सब लोगों को लेकर वो कोलावेचा श्रीधर की झोपड़ी में गए और उनका जो वो टूटा फूटा जो लोटा है उसमें पानी भर के पी लिया और कोलावेचा श्रीधर एकदम से अचेत हो गए। उन्होंने बोला कि मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन मेरा जो सबसे खराब वस्तु थी आपने उसी से पानी ग्रहण कर लिया, अब मेरे जीवन में कुछ आशा नहीं बची है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैंने आज तक इससे स्वादिष्ट जल कभी नहीं पिया, और चैतन्य महाप्रभु ने उन पर विशेष कृपा की। और सन्यास जब चैतन्य महाप्रभु ने लिया और अद्वैताचार्य के घर पे, हो सकता है बहुत सारी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर आपको नहीं भी समझ आए, सिर्फ सुनने भर से आपको असीम लाभ प्राप्त होगा, आप सोच भी नहीं सकते इतना लाभ आपको इस समय मिल रहा है। तो ऐसा मत सोचिए कि पता नहीं कहाँ से स्टोरीज निकाल के ले आए हैं। सो आप अगर बहुत ही धैर्य से और श्रद्धा से इसको सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। ये हर बार ऐसी कथा सुनने को नहीं मिलती, बाय चांस प्रसंग निकला है तो बात कर रहे हैं। सो जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया और सन्यास लेने के बाद अद्वैताचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु रुके थे और वहां पर शची माता भी आई थी और चैतन्य महाप्रभु ने शची माता को रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे लिए भोजन बनाइए। तो उस समय विशेष रूप से वो कोला बेचा श्रीधर के घर से जो है सीताफल लेके आए और सीताफल का शची माता ने पकवान बनाया और चैतन्य महाप्रभु को खिलाया। सो चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा की कोला बेचा श्रीधर पे। इसी तरह एक चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे शुक्लांबर ब्रह्मचारी, आपने सुना है कभी किसी ने नाम? सो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे शुक्लांबर ब्रह्मचारी, बहुत ही गरीब थे, मधुकरी करके जीवन बिताते थे और एक झोला उनके कंधे पर टंगा होता था और जगह जगह जाकर भिक्षा मांगते थे। बंगाल में अगर आप कभी जाएं तो बंगाल में बहुत गरीबी है। आपका आप बंगाल में जाओगे ना तो आपको लगेगा बुद्ध विहार तो पॉश कॉलोनी है उसके मुकाबले में, इतनी गरीबी है बंगाल के अंदर। आप कलकत्ता से 10-12 किलोमीटर भी बाहर चले जाओ तो आपको वहां पे मिट्टी के मकान बने हुए दिख जाएंगे आपको, है ना। जैसे दिल्ली से आप बाहर निकलो तो सब जगह पक्का ही मकान सब बने हुए हैं, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। आप जैसे कलकत्ता है, वर्धमान है, ऐसे जो मेन टाउन्स है, मालदा है, आप वो शहर से 10-15 किलोमीटर भी बाहर गए तो एकदम बहुत ही ज्यादा गरीबी और सादगी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उसके अंदर भी जो विशेष बात ये होती है कि जो पश्चिमी बंगाल में जो गांव है, चाहे वहां पे घर मिट्टी के बने हुए हैं, हर एक घर के बाहर एक तालाब होता है ना। तालाब को क्या बोलते हैं? पुकुर बोलते हैं, है ना। हर एक घर के बाहर तालाब होता है और वहां पे एक भी मच्छर देखने को नहीं मिलता, इतनी सफाई रखते हैं लोग वहां पर। और अगर आप धोती कुर्ते में जाएंगे, हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे तो वो लोग आपके पैरों को पानी से धोएंगे, आपके आगे जमीन पे पानी डालेंगे ताकि आपको अगर गर्मी लग रही हो तो गर्मी से आपको राहत मिले, इतना सम्मान करते हैं लोग पश्चिम बंगाल के। अभी भी वहां पर संस्कृति कुछ बची हुई है। सो क्योंकि वहां पर गरीबी है, हाँ, इसीलिए कोई भिखारी अगर किसी गरीब के घर भिक्षा मांगने जाएगा तो उसको वो घी लगी रोटी तो नहीं देगा। जो बचा खुचा है, जो खराब हो रहा है, वही सामान तो देगा नहीं। सो शुक्लांबर ब्रह्मचारी मधुकरी करते थे और चिड़वा इत्यादि उनको जो मतलब घटिया से घटिया सामान उनको मिलता था, लेकिन वो संतोष से रहते थे। और एक बार चैतन्य महाप्रभु ने जबरदस्ती उनके झोले में से चिड़वा निकाल के खाया और बहुत ही प्रसन्न हुए कि जो मेरे भक्त हैं इतनी सादगी से रहे। सो इन सब दृष्टांतों से हम देख सकते हैं कि भगवान जो है वो भाव ग्रही है ना, वो वस्तु से प्रभावित नहीं हो रहे, वो इस चीज से प्रभावित नहीं हो रहे कि आप कितनी सुंदरता से या कितने स्वादिष्ट पदार्थ आप उनको ऑफर कर रहे हो। हमें स्वादिष्ट पदार्थ खिलाने ही चाहिए, इसमें शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि चलो स्वादिष्ट पदार्थ हम खाएंगे, भगवान को भक्ति के साथ सूखे चावल देते हैं, है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें भगवान को अच्छी से अच्छी वस्तु देनी चाहिए, लेकिन भगवान वस्तु नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि आपने क्या पकवान आपने भोग लगाया है, भगवान ये देखते हैं कि आप किस भाव से आप जो है उन पकवानों को, उन वस्तुओं को आप अर्पित कर रहे हो, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जो भाव कैसे आएगा, भाव आएगा यदि हम तन्मयता के साथ और बहुत ही संकल्प के साथ, हम जो हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने हमें जो भक्ति के नियम बताए हैं, उसका हम दृढ़ता से पालन करें। और हमारे जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने सिर्फ दो ही बातें बोली हैं, कि तीन बातें बोली हैं उन्होंने, कि अगर आप तीन बातें करोगे तो समझो कि आप अच्छे भक्त हो। और तीन बातें क्या हैं, पहले तो रोज कम से कम 16 माला का जप करो, है ना। और दूसरे उन्होंने क्या बोला, चार नियमों का पालन करो, है ना। चार नियम कौन से हैं, कि शराब नहीं पीनी, चाय कॉफी नहीं पीनी, है ना, और मांस नहीं खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना, है ना। और तीसरा क्या बोला, जुआ नहीं खेलना। और चौथा क्या है, पर स्त्री या पर पुरुष गमन नहीं करना, जिसे व्यभिचार कहते हैं, व्यभिचार नहीं करना, इलिसिट सेक्स, हाँ वो नहीं करना। सो ये दूसरी बात बोली, हाँ। और तीसरी बात क्या बोली, कि जो भी वस्तु है आप भगवान को भोग लगाओ, फिर आप उसको ग्रहण करो, है ना। सो अगर हम प्रभुपाद की इन बातों को मानते हैं, अगर प्रभुपाद के इन आदेशों का अगर हम पालन करते हैं, तो ये कहा जा सकता है, ये क्या हो रहा है, हाँ ये किसका फोन है, अच्छा ओके भाई। सो अगर हम प्रभुपाद के इन शिक्षाओं का पालन करते हैं, सो प्रभुपाद ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी गिनती अच्छे भक्तों में होगी, और आप जब ये शरीर छोड़ेंगे तो प्रभुपाद आपको भगवत धाम लेकर जाएंगे, है ना। सो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप भगवान को अच्छे से अच्छा भोजन तो ऑफर करो ही, अच्छे से अच्छे भोजन का भोग लगाओ, लेकिन साथ में भाव भी लेके आओ। भाव आ सकते हैं जब आप अच्छे से भक्ति में जुड़ोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचो कि सिर्फ भगवान को भोग लगा देता हूं बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। हमें ये पूरा पैकेज है, है ना। हमें 16 माला का भी कम से कम रोज जप करना पड़ेगा, हमें चार नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, और हमें भगवान को तब हम भोग लगाएंगे तो भगवान हमारे तरफ देखेंगे। और क्यों देखेंगे, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो पहले हम प्रभुपाद को रिक्वेस्ट करते हैं, हम पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नहीं तो प्रभुपाद ये देख लेते हैं कि अगर आप निष्ठावान भक्त हो, अगर आप अच्छे से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है अभी कमियां हैं, लेकिन कम से कम प्रयास तो अच्छा है, हाँ अगर अच्छे से प्रयास करेंगे तो प्रभुपाद जो भोग आप भगवान के सामने रखोगे, तो प्रभुपाद भगवान को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए, है ना। सो प्रभुपाद बहुत दयालु हैं, लेकिन हमें उनकी दयालुता का जो है गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, है ना। अगर प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप कुछ नियमों का पालन करो, तो अगर हम उन नियमों का पालन करेंगे तो प्रभुपाद प्रसन्नता पूर्वक जो भोजन आप भगवान के सामने रखेंगे, वो प्रभुपाद भगवान को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज इसे ग्रहण करो, तब वो जो भोजन है वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाएगा। और जब आप उस प्रसाद को खाओगे तो आपकी बुद्धि और भी ज्यादा शुद्ध हो जाएगी, है ना। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हाने रस्यो पजायते, प्रसन्न चेत साही आशु बुद्धि परियव तिष्ठते। सेकंड तो दूसरा अध्याय भगवान भगवद गीता का, उसमें कह रहे हैं प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसादे मतलब प्रसाद से जो भगवान ने ग्रहण किया है, सर्व दुखानां जितने आपके दुख हैं, हाँ हानिर अस्यो पजायते, वो सारे आपके जो दुख हैं वो खत्म हो जाएंगे, है ना। प्रसादे सर्व दुखानां हानिर अस्यो पजायते, सारे दुख क्लेश खत्म हो जाएंगे। प्रसन्न चेत साहि आशु, आशु का मतलब बहुत जल्दी, प्रसन्न चेत साहि, बहुत जल्दी ही जो है आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, बुद्धि परि अवतिष्ठते, और आपकी जो बुद्धि है वो शुद्ध हो जाएगी। तो अगर हमारे अभी दुखों का अंत नहीं हो रहा, इसका मतलब हम अच्छे से अभी नियमों का, प्रभुपाद की शिक्षाओं का, आदेशों का पालन नहीं कर रहे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान किसी बात का वचन दे और उसको पूरा नहीं करे। अगर वो पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें कमी है। तो आप प्लीज अपने मन में आप निरीक्षण करो, आप इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मनिरीक्षण करो, और देखो कहाँ पर कमी है, और उस कमी को दूर करने का प्रयास करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो दूर, तो भक्तों से बात करो, है ना। तो अगर आप भक्तों से बात करोगे, उनको बोलोगे कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप बताओ मैं इसको अपने आप सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप प्लीज मेरी हेल्प करो, कैसे करूँ। हाँ, तो जो भक्त हैं वो आपको उसका कुछ ना कुछ समाधान बताएंगे, और समाधान बताना ही तक सीमित नहीं रहते भक्त। अगर आप कोई प्रॉब्लम लेकर आए हो और आपने भक्त से पूछा है, तो भक्त आपको समाधान तो बताते ही हैं, साथ में आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं, भगवान को प्रे करते हैं कि हे भगवान आप प्लीज, आप इस भक्त की, ये बहुत अच्छा भक्त है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप प्लीज इनकी हेल्प कीजिए, है ना। तो भगवान, अगर आप अपने लिए कुछ मांगेंगे तो हो सकता है भगवान नहीं सुने, क्यों, क्योंकि अभी हम अच्छे भक्त नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और भक्त के लिए अगर आप भगवान को प्रे करेंगे, तो भगवान बहुत खुश होंगे, भगवान बोलेंगे कि इसने अपने बारे में नहीं सोचकर दूसरे भक्त के बारे में सोचा, तो उससे उस भक्त को भी लाभ होगा और आपको भी फायदा होगा। सो आप प्रयास करो अच्छे से, जो प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं, प्रभुपाद के आदेश हैं, प्रभुपाद के जो निर्देश प्रभुपाद ने दिए, जो प्रभुपाद ने रिक्वेस्ट किया है आप सबको, आप सब उनका पालन करो अच्छे से। आप लोग प्रयास करो कि प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो आप, है ना, और कहीं पर भी आपको अपने जीवन में उसको अपनाने में प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछो, और अच्छे, बहुत सारे अच्छे भक्त हैं, आप उनसे पूछो तो आपको उसके उत्तर मिलेंगे, और इससे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, ठीक है। हरे कृष्णा। सो आपका कोई प्रश्न है तो
जी, भगवान को मधुकरी क्यों पसंद है इतना, मतलब अभी तीन एग्जांपल में हमने लिए।
हाँ, भगवान को मधुकरी क्यों पसंद है? सो इसका भी दो उदाहरण है एक्चुअली में, है ना। कई बार कोई भक्त सोच सकते हैं वो भगवान से कुछ मांग रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा, जैसे सुदामा है, है ना, वो जब तक भगवान कृष्ण से मिलने नहीं गए थे तब तक बहुत ही गरीबी में जीवन बिता रहे थे। तो हालांकि भगवान चाहते तो उनको समृद्धि दे भी सकते थे, वेट थोड़े ना कर रहे थे भगवान के, हाँ मेरे से मिलेंगे मांगेंगे तो मैं इनको समृद्धि दूंगा। सो सुदामा जी क्या सोच रहे थे, सुदामा जी सोच रहे थे कि हो सकता है मैं अभी इसको संभाल नहीं पाऊं, अगर मुझे समृद्धि मिले तो हो सकता है मेरा दिमाग खराब हो जाए, तो इसीलिए भगवान अभी समृद्धि नहीं दे रहे। समृद्धि भगवान ऐसे भक्तों को देते हैं जो समृद्धि को संभालने की क्षमता होती है, जैसे ध्रुव महाराज, है ना, उनको दिया, उनको समृद्धि, अपने उनके पिता के राज्य से भी ज्यादा समृद्ध राज्य दिया उनको, है ना, फिर भी उनका दिमाग खराब नहीं हुआ, है ना, वो निर्विकार बने रहे, उदासीन बने रहे धन संपत्ति के प्रति। सो भगवान जो है, ज्यादातर भक्त अगर उनको धन संपत्ति मिल जाए तो कई बार क्या होता है कि वो भक्ति से हट जाते हैं, है ना। इसीलिए भगवान ये चाहते हैं कि, और चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं अगर उनके भक्त वैराग्य विद्या का अनुशीलन करें, है ना। चैतन्य चरितामृता में एक श्लोक भी है इसके लिए, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, कि अगर चैतन्य महाप्रभु के अगर जो भक्त हैं अगर वैराग्य विद्या का अनुशीलन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रसन्नता होती है। आप वेदाव्यास ढूंढेंगे तो उसमें आपको ये श्लोक आपको मिल जाएगा, है ना। मुझे काफी साल पहले तो याद था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है श्लोक को। सो अगर जो भक्त अगर मधुकरी करता है तो मधुकरी करने के लिए उसको अलग अलग घरों में जाना पड़ेगा उसको, और जब वो किसी के पास जाएगा भक्त तो वो उनसे केवल भिक्षा मांग के नहीं चला जाएगा, वो उनको रिक्वेस्ट करेगा कि आप प्लीज भगवान का नाम लो। तो मधुकरी के द्वारा भगवान पर निर्भरता बढ़ती है, है ना, और साथ ही मौका मिलता है भक्त को भगवान के बारे में दूसरों को बताने के लिए, है ना। तो दोनों को लाभ होता है। इसलिए अगर कोई मधुकरी करके और बहुत गरीबी से अगर जीवन बिताए और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे तो भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। ये ना केवल वैष्णव धर्म में, आप जुडाइज्म में भी देखेंगे, यहूदियों में, वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि धर्म के प्रति गंभीर हैं, वो गरीबी का व्रत लेते हैं। वो लोग जानबूझ के गरीबी में रहते हैं, है ना। गरीबी में रहने से क्या है, एक तो विनम्रता रहती है मन में, है ना, ज्यादा मन में घमंड नहीं आता, है ना। जो गरीब आदमी है हर कोई उसको कुछ भी आके बोल सकता है, वो किसी का प्रतिरोध नहीं कर पाता, नहीं। सो गरीब जो व्यक्ति है जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं है, एक तो वो विनम्र बना रहता है, दूसरा उसको मौका मिल जाता है, ज्यादा समय मिलता है भगवान का नाम लेने के लिए। जो धनवान व्यक्ति है वो जो उसके पास है उसको बचाने में, और जो उसके पास अभी और उसको अगर धन है तो उसको लगता है कि भी मैं 50 लाख के 1 करोड़ बना लूंगा, 1 करोड़ के 10 करोड़ बना लूंगा, तो स्कीम चलती है दिमाग में। अगर जेब में है ही नहीं पैसे तो स्कीम आएगी नहीं दिमाग के अंदर, तो बंदा सोचेगा चलो भगवान के नाम में ही क्यों ना समय लगाया जाए, है ना। इसीलिए अगर हम गरीबी में, बहुत गरीबी में मतलब बहुत ही सादगी से अगर हम जीवन बिताएंगे और जो भी हमारे पास कुछ अगर धन संपत्ति है उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उससे हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति करते हैं, ठीक है।
आपने बोला कि भगवान पर निर्भरता, निर्भरता जब होती है तो भगवान को निर्भरता पसंद है।
हाँ,
तो जैसे कि जो हमारे जो चार आश्रम धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो क्या इनकी कैटेगरी इस तरह से कि ब्राह्मण ज्यादा निर्भर भगवान पर, इसलिए उसका दर्जा ऊपर है, वैश्य भी थोड़ा इसलिए निर्भर है भगवान पर क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कि उसका बिजनेस आगे नहीं आएगा, तो क्या कुछ, और शूद्र क्योंकि वो सर्व कर रहा है इन तीनों को, तो उसको लगता है कि उसकी निर्भरता इन तीनों पर है, बाकी बाकी तीनों।
नहीं नहीं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, ये जो चार वर्ण है, जो ये तो आप किस तरह का कार्य करना चाहते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करने में रुचि है और दूसरों को आप सिखा सकते हो तो ब्राह्मण बन सकते हो, है ना। ये जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर है, जिस तरह की रुचि है आपकी, जिस तरह की वृत्ति है आपकी, है ना। सो क्योंकि अगर हम अपना शरीर भी देखें तो सिर का जो स्थान है वो ऊंचा माना जाता है, नहीं, क्योंकि अगर दिमाग ठीक नहीं हो, शरीर कितना ही हट्टा कट्टा क्यों ना हो, बेकार है अगर दिमाग सही से काम नहीं कर रहा तो दिमाग जो है, जो ब्राह्मण है वो उनकी तुलना दिमाग से की जाती है। तो जो ब्राह्मण है उनका कर्तव्य है कि वो अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करें, पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचे, अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचे। सुरक्षा का जिम्मा ब्राह्मणों की सुरक्षा का जिम्मा क्षत्रियों के पास है, उनका भरण पोषण करने का जिम्मा वैश्यों के पास है ना। तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कभी भी धन संचय के प्रति जो है नहीं लगता, इसीलिए पहले ये कहा भी जाता था कि सरस्वती और लक्ष्मी जी का बहर है, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी पैसा इकट्ठा करने के प्रयास ही नहीं करता था वो, है ना। वो ये सोचता था कि ठीक है मेरा आज का काम हो गया ना, कल की कल भगवान अपने आप देखेंगे, तो कभी भी धन संचय नहीं करता था और हमेशा यही प्रयास करता था कि लोगों को कैसे शास्त्रों के अनुसार शिक्षा दे ताकि वो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन बिताए, है ना। तो नेचुरली क्योंकि जो ब्राह्मण्स है, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, नेचुरली उनको ज्यादा ज्ञान होगा उनको, है ना। सो इसीलिए वो ज्यादा सम्मान्य थे, है ना। और क्षत्रिय क्योंकि रजोगुण में है, तो रजोगुण में जो है वो व्यक्ति, वो सतोगुण में जो व्यक्ति है जैसे ब्राह्मण है, वो सतोगुण में रहते हैं, और जो रजोगुण में है नेचुरली सतोगुण से नीचे का स्तर होगा उनको, क्योंकि उनके पास कुछ स्कीम होगी रक्षा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, है ना। इसी तरह से जो वैश्य है वो, उनमें रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है, और जो शूद्र है वो है ही तमोगुण के अंदर। सो उनके अंदर उस तरह से भगवान की भक्ति करने की रुचि है धीरे धीरे कम होती जा रही है, है ना।
जो शूद्र भी थे उनको भी इतना तो ज्ञान था कि भगवान कौन है,
हाँ।
लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि वो मतलब वो आज का जो शूद्र है वो सुनते हैं, लेकिन जो पहले जो शूद्र थे
नहीं। एक्चुअली में क्या है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो ये चार वर्ण हैं ही, इसके अलावा एक और श्रेणी भी है, वो अंत्यज की श्रेणी है। अंत्यज कहा जाता है उनको जो त्यागने के योग्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है वो फिर भी वर्णाश्रम का हिस्सा है, धीरे धीरे भगवान की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा, लेकिन जो अंत्यज है जिनका आप अभी वर्णन कर रहे हो, वो जिनकी भगवान के बारे में ना तो रुचि है ना तो जानकारी है, और बल्कि भगवान के प्रति शत्रुता का भाव है, वो लोग जो हैं वो उनके लिए भगवान की भक्ति में लग पाना बड़ा मुश्किल है उनके लिए, है ना। सो जो शूद्र हैं वो शूद्र भी वर्णाश्रम का हिस्सा है। शूद्र होना का मतलब यह नहीं है कि भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, वर्णाश्रम का हिस्सा होने से वो भी भगवान की भक्ति कर सकता है। प्रॉब्लम अंत्यज के साथ है जो कि वर्णाश्रम में आई नहीं रहा, जो अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल दिमाग खराब हो रहा है लोगों का। और किसी का प्रश्न है तो ठीक है। आप सबका धन्यवाद। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, श्रील प्रभुपाद की।